किंतु उसमें सेवा कृति नहीं देखी जाती। उनके परब्रह्म
भूख नहीं लगती,
वो भूख नहीं लगती, वो सर्वव्यापी है, उनको कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है, इसलिए प्रहलाद महाराज की कोई सेवा नहीं देखी जाती। महाराज जी की सेवा वृत्ति देखी जाती है, अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। उनसे भी श्रेष्ठ हनुमान जी के समय में संबंध में बताया, सब समय भगवान की सेवा में रहते हैं। एक समय भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और सीता जी ने नितिन की और कहा, ये बंदर हम लोगों को सेवा का कोई अवकाश नहीं देता, ये दिन भर रात भर यही सेवा करता है, क्यों ना हम लोग श्री रामचंद्र जी की सेवाओं को चार आदमी दिन रात मिला करके बांट लें। रात की सेवा सीता जी करेंगी और दिन को भी बांट दिया, कोई चमन बुलाएगा, कोई पंखा बुलाएगा, कोई कुछ करेगा, इस तरह से सारी सेवाएं बांट। हनुमान बोले, भैया मैं सेवा नहीं पाने से तो मर जाऊंगा, हमने कुछ भी सेवा की, कोई भी सेवा अवशिष्ट नहीं है, कोई सेवा नहीं है, बहुत दिन तुमने सेवा की, अब हम लोग सेवा करें। अरे भाई देखो, हमको ऐसी कोई सेवा दो जो तुम लोग नहीं करते हो, इसलिए एक सेवा हमको ये दे दो, भगवान कभी राम को जब भाई आए तो मैं चुटकू बजा दिया करूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, राम को तो कभी जम्भाई आती नहीं है, भगवान को क्या जम्भाई आएगी, कभी थकते नहीं है, जम्भाई आएगी नहीं, अच्छा ठीक है ये सब, किंतु घर में घुस करके नहीं बाहर। हनुमान जी घर के बाहर में
बैठ के
उन्होंने तो वादा किया था कि जब वो जम्भाई लेंगे तब चुटकी बजाएगी बजाएंगे, किंतु राम से उनको बाहर में बैठा दिया गया तो वो चुटकी बजाने लगे उसी समय। बोले जी कब आ जाए को पता नहीं, घर के भीतर आने तो देते नहीं, इसलिए मैं चुटकी बजाता हूँ, जब ही चुटकी बजाना किया राम का जम्भाई आ गया, आदमी दिन रात जम्भाई, सारी समाएं बंद, खाना पीना बंद, टहलना बंद, इधर उधर का चामर तामर क्या उनको अच्छा लगे, दिन रात जम्भाई जम्भाई आ रही है, हनुमान जी बजाते चले जा रहे। अंत में राम ने सबको बुलाया, लाकर के देखो भाई हनुमान को कोई अनुरूप कोई सेवा दे दो, और नहीं तो ये कोई भी सेवा लेने नहीं देगा। अंत में उनको सेवा दी गई जैसे पहले था। हनुमान जी बिना सेवा कर उनकी करोड़ों करोड़ों गाथाएं हैं, किंतु हाँ इसमें थोड़ी सी कमी है। वो क्या कमी? वे राम का आलिंगन नहीं कर सकते, राम के कंधे पर बैठ नहीं सकते, कोई मीठी चीज हो उसको झूठा राम को नहीं दे सकते हैं, मर्यादा के अंदर ना रह करके सेवा करेंगे, इसलिए इनकी अपेक्षा पांडव लोग पहुंचते हैं। कैसे पांडव लोग? श्रेष्ठ अभी माधव महाराज जी उपस्थित करेंगे, जिसके कारण पांडव को हनुमान से श्रेष्ठ बताया गया। हनुमान जी राम के सेवक हैं, रामचंद्र जी प्रभु हैं। हनुमान जी कहते हैं, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, यह भाव जाए जनु भोरे, या सपन में ये भाव न जाए कि रामचंद्र जी मेरे प्रभु हैं, मैं उनका सेवक हूँ। अब आते हैं हम पांडवों में, पांडवों के साथ कृष्ण का क्या संबंध है? कृष्ण जी और अर्जुन आदि जो पंच पांडव हैं, आपस में लोग कुबेरा ममेरा भाई हैं, सेवक और प्रभु जो संबंध है, ये संबंध भी गाढ़ा है। और क्या है? अर्जुन जी कृष्ण के साला लगते हैं, कृष्ण अर्जुन के साला लगते हैं, और कृष्ण अर्जुन कृष्ण के भोगनीपति लगते हैं, बैनरी लगते हैं। कैसे? एक समय द्वारका में प्रचार हो गया कि बहुत बड़े सन्यासी आए हुए हैं, सब जाके उनसे आशीर्वाद लो, इसके पीछे पूरा रहस्य छिपा हुआ है। वो क्या चीज है? बलदेव की इच्छा है अपनी बहन सुभद्रा की शादी दुर्योधन से हो, लेकिन वसुदेव महाराज, देवकी देवी और जो कृष्ण के पात्रणियाँ एवं उनकी कृष्ण पर चाहते हैं, नहीं अर्जुन से हो, क्योंकि बलदेव लोग बड़े भाई हैं, कोई उनके डर के मारे कुछ कह नहीं सकते, सब चुपचाप रहते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को बताया, ऐसे नहीं होगा, तुम त्रिदत्त सन्यासी देश में द्वारका में आ जाओ, क्योंकि जो परामर्श दिया अर्जुन ऐसे आ गए। अब सब जा रहे दर्शन करने के लिए, सब प्रणाम कर रहे हैं और अर्जुन क्या कर रहे हैं, छद्मवेश में मंगलम अस्तु मंगलम भवतु शोभा भवति भव ही कर रहे हैं। जब सुभद्रा देवी को ये बात पता चला कि तो ये बहुत बड़े सन्यासी आए हुए हैं, उनके आशीर्वाद लेने से मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, सुभद्रा देवी भी बहुत थक भज करके आई दर्शन के लिए। कृष्ण पहले से बता दिया था, दर्शन करके जब लौट गई थी अर्जुन को पकड़ लिया, रथ में बैठा लिया, और जो कहाँ व्यक्ति दंड पे क्या किया, दंड धनुष ले लिया, खड़े हो गए सबका सामना करने के लिए। सुभद्रा देवी क्या किया, रथ के बागडोर अपने हाथ में ले ली, अब चल रहे हाथ करके, पूरा द्वारका में हल्ला मच गया कि ये सन्यासी ने ढोंगी था, अर्जुन था, सुभद्रा को हरण करके ले जा रहे हैं, बलदेव को रहा नहीं गया, चतुरंगी ने सेना को आदर कर दिया, आज अर्जुन को हम मार के छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उनको, सबको पता चला, सब सेना तैयार हो गए, सेना ये तैयार हो गई, और कृष्ण चुपचाप बैठे हुए हैं, मानो कुछ जानते ही नहीं। दाऊ भाई आके कहा, अरे कृष्ण तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी बहन को अर्जुन भरा के ले जा रहा है और तुम चुपचाप बैठे हुए हो, क्या क्या हुआ क्या हुआ, और कुछ जानते ही नहीं, अरे देखा नहीं सुभद्रा को अर्जुन हरण करके ले जा रहा है। तब कृष्ण ने बताया, भैया ये बुरा क्या किया, छुट्टी का धर्म है, जिनके बाहू में बल है वह ले जा सकते हैं, मैं जब दूसरे जी का हरण किया था आपने तो मुझे मदद किया था, इतना हर्जा क्या है, नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, सब सेना जा रही है, मैं भी हर मुसल लेकर जा रहा हूँ और जिनको मार के छोड़ूंगा, तो छठवा देश में आकर के मेरी बहन को ले जा रहा है। चल पड़े देखो भैया, देखो तो सही रथ कौन चला रहा है, अर्जुन तो नहीं, सुभद्रा चला रही है, मुझे तो लगता है अर्जुन सुभद्रा का हरण नहीं किया, सुभद्रा ने ही अर्जुन का हरण किया। अच्छा भैया मेरे आपसे विनती है, जब दोनों के मन मिल गया, अभी तो हो ही गया, केवल फॉर्मेलिटी बाकी है, आप अगर अर्जुन को मारेंगे आप क्या चाहेंगे, आपके बहन विधवा बन गए सारा जिंदगी भर, ये कौन सा विचार है, बताया क्यों नहीं, सब उनको ठीक बुलाया, बहुत घटा करके शादी की गई। ऐसे अर्जुन के साथ कृष्ण का संबंध है, हनुमान जी से ऐसे संबंध राम जी के नहीं है। और एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक समय नारद ऋषि घूमते घूमते पहुंचे द्वारका में, नारद ऋषि क्या करते हैं, नारद ऋषि बाजाए बिना राधिका रमन नामे, और कभी श्रीमन नारायण 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 कर दिया कि मेरा राजा, हम लोगों का राजा भीम है, एक वरदान था, वो कभी अपने पुलिस को प्रणाम करेंगे और तुरंत मर जाएगा। तो दुर्योधन ने सोचा बहुत अच्छा ही हुआ, उसमें मारना भी नहीं पड़ेगा, युधिष्ठिर प्रणाम करते ही मर जाएगा तो मैं युद्ध में जीत जाऊंगा, और क्या किया जाए। कृष्ण ने बताया युधिष्ठिर महाराज, देखो भैया मैं भीम के पीछे रहूंगा, तुम मेरे उद्देश्य से प्रणाम करना, भीम के लिए नहीं तो प्रणाम नहीं लूंगा, कोई चिंता नहीं। और दुर्योधन मणिमन मल करा खा रहा है तो खाने तो क्या आता जाता है, ठीक है। दुर्योधन ने बोला ठीक है, जो राजा है प्रजाओं का कर्तव्य, प्रजा को प्रणाम करना, तो उनको प्रणाम करे। युधिष्ठिर जी आए, कृष्ण के उद्देश्य से मणिमन कृष्णाय नमः करके प्रणाम किया, कुछ नहीं हुआ। फिर युद्ध हुआ, युद्ध में पांडवों का विजय हुई। जब अभी उन लोग को मारा था सप्तर्षि मिल करके, जब तक उनको मारा था अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, आज सूर्यास्त के पहले मैं जरूर जयद्रथ को मारूंगा, नहीं तो मैं आदमी अपने को आहुति दे दूंगा। ये जब सोचा तो क्या किया जाए, भीष्म पितामह ऐसे चक्र को बनाया, उनको भेद करके आई नहीं सकते अंदर, ठीक है यह तीर धनुष लेके परिक्रमा करने लगे। अब आदमी कूद नहीं वाले थे, हुआ क्या, कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक करके रखा था, चक्र हटा लिया, जरूर हटाया, क्या देखा, सूर्य चमक रहा है। दुर्योधन ने पुकारा जयद्रथ को, देखो तुम्हारा सब कुछ मर रहा है, आओ जरा आनंद कर लो, हंस लो, सामने आ जाओ। आए तब बताया कृष्ण ने, अरे अर्जुन क्या देख रहे हो, सामने खड़े हैं, मारो इसको। अर्जुन सोच रहा हो क्षत्रिय का धर्म है, जो असाधारण किए नहीं उनका बार नहीं करना चाहिए, क्या सोच रहा है अर्जुन, तुम जल्दी मारो उनको। तो बताया इनका तो सत्व नहीं है, और लोग कह रहे दुर्योधन असत करेंगे और न युद्ध है। उसने कहा जब अभिमन्यु को मारा था क्या ये नए युद्ध था, एक युद्ध करेगा सब मिलके मारा, ये क्या नए हुआ था, द्रौपदी का अपहरण हुआ था, ये क्या नए हुआ था, जब भीम को लड्डू खिला था 20 लड्डू, ये क्या नए था, एक एक का चला रहा, अरे फिर क्या माता आतताई को आतताई बधे न दो सर मार अर्जुन मारा। ऐसे कृष्ण ऐसे कुछ काम नहीं है जो अर्जुन के लिए भीम के लिए पंच पांडव को नहीं किया हो। आखिर तक युद्ध में अर्जुन का रथ नहीं हटा, अर्जुन के घोड़े को पानी पिलाया, उनको पैर पर मसाज किया, ऐसे जो राम के लिए हनुमान के संबंध कभी भी संभव नहीं है। इतने संबंध इतने प्रीति, इसके कारण हनुमान से अर्जुन या पांडव को बहुत श्रेष्ठ है, हनुमान सपना भी नहीं सोचते हैं कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन के रथ के ऊपर बैठा दिया और रक्षा करने के लिए, हम सब लोग गुरु के सिंह से सम्मान करने के लायक है। अपने वक्त को विराम देता हूँ। पांडवों की सेवा की, उनके घोड़ों को धोए, उनको पानी पिलाया, उनके साथ ही बने, और हनुमान जी को भी कहा कि तू सब समय इनके ध्वजा पर रहना, और यदि विपक्ष के भी बाण ऐसे मारते हैं जो उसमें अर्जुन मर सकते हैं तो उनके रथ को पृथ्वी के अंदर में घुसा देना, और सब प्रकार गर्जन करना जिससे कि उनके हाथों से अस्त्र निकल जाए। तो ऐसी सेवा करते थे, हनुमान जी को भी अर्जुन का सेवक बनना पड़ा, कृष्ण तो बने ही, इसलिए पांडवों की बहुत तक। किंतु एक बात है, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन युद्ध से मुड़ गए, जैसे भीख मांग करके खाना उचित है किंतु क्षत्रियों का आदर, ये इन लोगों से युद्ध करना नहीं, ये तो हमारे भीष्म पितामह जी हमारे भाई बंधु चाले सभी ये लोग हैं, इनको मैं नहीं मारता। कृष्ण ने उनको भी स्वरूप दिखलाया, ये मरे हुए निमित्त मत भाव सब जता के दांतों फले देखा कि असंख्य विश्व ब्रह्मांड के देवता से गंधर्व से लेकर के सारी सेनाएं भीष्म पितामह इत्यादि उनके मुख में है, और विराट स्वरूप देखा। उस समय अर्जुन बोले हाथ जोड़ करके, प्रभु मैंने आपको सखा बहुत कहा है, आपको शाला कहा है, अपने घोड़े छुड़वाए हैं, शादी किया है, ये मैंने बहुत अन्याय किया, इसलिए आप क्षमा करें, अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं। अर्जुन का वो जो सत्य भाव था वो भी खत्म हो गया एक विश्व रूप के देखने से, इसलिए ये थोड़ी सी कमी है। इसलिए समाज विष्णु पितामह इत्यादि को ज्ञानी भक्त कहा जाता है। देखते समझेंगे ज्ञानी में और ज्ञानी भक्त में अंतर है। ज्ञानी तो वो है जो अपने को ही सर्वं खलोदितं ब्रह्म सोऽहं इत्यादि तत्त्वमसि मैं ही वही हूँ, ये भक्ति के संपूर्ण विरोधी है। और दूसरा ज्ञानी भक्त जो भगवान को भगवान जानते हैं, उनके ऐश्वर्यमयी भक्ति करते हैं, उनके प्रभु को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, वो थकते नहीं, सर्वव्यापी उनके प्रभु हैं, ये लोग ज्ञानी भक्त हैं। इनकी अपेक्षा इनको कहा जाता है ज्ञानी भक्त। और इनसे श्रेष्ठ अम्बरीश जी हैं, वो शुद्ध भक्त हैं। उनकी अपेक्षा हनुमान जी प्रेमी भक्त हैं। उनकी अपेक्षा पांडव लोग प्रेम
पर
भक्त हैं, प्रेम पर, और उनसे भी श्रेष्ठ कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, भाई हैं, सेनापति हैं, सलाहकार हैं, ऐसा कोई संबंध नहीं है जो नहीं है। सारे जातों में भी उद्धव ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, कृष्ण उनको अपना प्रिय बतलाया है। लक्ष्मी जी उतनी प्रिय नहीं है, शंकरसन अपने भाई प्रिय नहीं है, ब्रह्मा अपने पुत्र नहीं है, और हरिहर एक आत्मा शंकर जी ने मेरे प्रिय नहीं, जितने जीव उद्धव जी प्रिय है, ये उद्धव जी के, इनको प्रेमानुर भक्त कहा जाता है, क्रमशः एक से दूसरे श्रेष्ठ। ये उद्धव जी ऐसे भगवान के प्रिय हैं, जहाँ कृष्ण को स्वयं जाना होता है, अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं। यदि ब्रज में जाना हुआ, जबकि ब्रज छोड़ करके वे मथुरा में आ गए, और संदीपनी के आश्रम में शिक्षा लेकर के लौटे, ब्रज की तरफ में देख करके बड़े दुखी थे, उनके पिताजी उनके विरह में रो रहे हैं। ब्रजवासी गायें कीड़े नहीं खाती, बछड़े दूध नहीं पीते, मयूर और बोलते नृत्य नहीं करते, कोयल कुहू कुहू नहीं करती, सारा ब्रजवास श्मशान की भांति दिख रहा है, पिता और माता दोनों अन्ने हो गए हैं, और सबसे प्यारी जो गोपियां हैं जो उनके बिना रह नहीं सकती, उनकी दशा का वर्णन करना और कैसी प्यारी है भगवत चित्ता, जिन्होंने अपने चित्त को मेरे अंदर में रख दिया, इसलिए जीवित है, नहीं तो वो कभी मर जाती। कृष्ण ने गीता में बतलाया है, मन मना भव मन भक्त मदयादि मन नमस्कार, मन मना भव, यही इसी का तात्पर्य है मन भक्त चित्त। मन मना भव मैंने क्या, अपने मन को मेरे मन में दे दो। कैसे होगा, जब मन वही रहेगा तो आदमी चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, खा नहीं सकता, मन ही नहीं है। इसीलिए गोपियां कृष्ण के विरह में जीवी तरह सकती, नहीं तो वह रह नहीं सकती, कभी भी मर जाती, क्योंकि उनका प्राण कृष्ण के अंदर है। मन भाव मन मना भाव का एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए। कोई नवेली ब्रज की नंदगांव में ब्याही, कृष्ण का नाम तो सुना था, कृष्ण का दर्शन नहीं किया था, जब वो आई तो कृष्ण की दर्शन की बड़ी प्रबल लालसा होती। कृष्ण सवेरे गोचारण में कोटि कोटि गायों को लेकर और कोटि कोटि सखाओं को लेकर के एक वन से दूसरे वन में बांसुरी और सिंगार इत्यादि बजाते हुए जाते हैं। ठीक उसी समय में जिसमें कृष्ण गोचारण करने के लिए हमारी बड़ी चौड़ी गली से निकलेंगे उस समय उनका दर्शन करेंगे। दूसरे दिन सवेरे कृष्ण गोचारण के लिए आए, बंसी बजी और वो भी जाने के लिए तैयार हुई। उसकी सास ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं, तो कृष्ण का दर्शन करने मत जाओ, काला सर्प है काट देगा उसका बीज, जीवन भर नहीं उतरेगा। वो बोली तो तुम्हारी बेटी किस लिए जा रही है और तुम क्यों जा रही हो, और नगर की सारी महिलाएं यहाँ तक कि अंधे भी लोग जा रहे हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए, नहीं बहन के मैं तो नहीं रहते, भले घर से आप निकालो। वो आ करके दरवाजे के पास में खड़ी हो गई और कृष्ण को एक तक देखने लगी। कृष्ण समझ गए, एक बछड़े की पूंछ थोड़ी सी छू दी और बछड़ा कूदता हुआ फिर वहीं पर पहुंचा। कृष्ण भी उसी के बहाने वहां पर पहुंचे, अपनी बांसुरी लिया और उसके कोही में लगा दिया और उसका चित्र लेकर दिया। वो बेचारी दरवाजे पर खड़ी है, मन तो है नहीं मदगत प्राणा मन मना भव। कृष्ण तो चले गए, धूल उठी थी वो भी खत्म हो गई, गाय चली गई, किंतु वो दरवाजे पर खड़ी रही तो खड़ी ही रही। उसके साथ में आया, क्या कर रही है, मैंने कहा था ना कि काला सर्प काटेगा तो दसेगा बीच नहीं उतरेगा, तुम मानी नहीं, चल घर चल। घर ले गई और जैसे घर से जाओ मटके ले आओ और दही का मंथन करो। तो वो मन तो था नहीं, क्या मटके में है नहीं है देखा नहीं, एक मटका लाया उसको सरसों रखा था, सरसों जानते हैं सरसों रखा था और ले करके उसका मंथन करने लगी। उसके साथ में देखा जी क्या मंथन कर रही है, सरसों बड़ी तो है नहीं, कजा भी इसका वो उतरा नहीं,
बीच
नहीं उतरा नहीं। अच्छा एक बात करो, गांव से बाहर में कुआं है वहां से पानी लाओ जैसे रोज लाती है, और एक बच्चा हाथ में दे दिया, घड़े के ऊपर घड़ा, उसके ऊपर में घड़ा, यहाँ पर एक घड़ा, यहाँ घड़ा, यहाँ घड़ा, और एक ड्रोन बांधी थी उसको दे दी, जाओ पानी लाओ। ब्रज में ऐसा रिवाज है, बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के, पानी खारा, बचन गारी, यह है वृंदावन की और मथुरा की ये बलिहारी। तो वो गई, मन तो था नहीं, कुएं पर पहुंची, अभ्यास बचता, बच्चे को रख दिया, घड़े को रख दिया और रस्सी ली और उसका फंदा बनाया, वो घड़े में न डाल करके बच्चे के गले में डाल। अब वो कुएं में देने वाली थी तो कुछ गोपियों ने कहा रे इसको भूत लग गया, अपने बच्चे को लेकर के दे रही है। दूसरी बोली ये भूत नहीं नंद का भूत लगा है। तो मन था नहीं, फिर किसी प्रकार से उनको पकड़ करके घर में लाया गया, किंतु वो बीच उतरने का नहीं, ये मन मना भाव। तो गोपियों का ऐसा चित्त है, कृष्ण कह रहे हैं जल्दी से जाओ, हमें दिन में तड़पते हुए मरते हुए हमारे माता पिताजी को सांत्वना दो और ऐसी गोपियों को भी सांत्वना देना। देखो एक बात करना, अपने बातों से बुद्धि से सांत्वना मत देना, मैं तुमको जो संदेश दे रहा हूँ कह रहा हूँ वो ही कहना, मैं बहुत सी बातें कह रहा हूँ इसे संतुष्ट हो जाए तो ठीक है, इसे ना हो तो इस बात से सांत्वना देना, इसे ना हो तो इससे, इस तरह से बहुत बातों को उनकी झोली में भर दी और वे उठो को सोने का रथ में बैठा कर और ब्रज को भेजा। उद्धव जी बड़े प्रसन्न हैं, कृष्ण ने अपना अंगरखा और सब वस्त्र बनमाला सब अपने अंगों के गंध से भरी हुई ये सभी कुछ उद्धव को पहना दिया और कंस का सोने का रथ था ऊपर में बैठा दिया, और जब तक उद्धव देखे तब तक लौटे नहीं उद्धव जी गए। अब उद्धव जी क्या गए वहाँ और किस प्रकार से सांत्वना दी ना उनकी विरह की ज्वाला को और बढ़ा दिया, ये कृष्ण भी नहीं स्थिर कर सके, उद्धव क्या स्थिर करें। तो इसके संबंध में संक्षेप में 15 मिनट हमारे भक्ति वेदांत श्रीमान सिद्ध महाराज जी को श्रीमद भागवत के गुण तथा मार्मिक प्रसंग है जो कि उद्धव जी का प्रसंग, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण शिखर वे रस के आस्वादक हैं। रस का आस्वादन दो प्रकार से होता है, एक मिलन दूसरा विरह। मिलन में तो ब्रजलीला के द्वारा ही हुआ है, जहाँ पर भगवान ने रास रचाया, कुंजों में कीड़ाएं की हैं, अपने किशोर वयस को सफल किया है। और कृष्ण जब ब्रज से मथुरा को गए और मथुरा से द्वारका को गए, उस समय ब्रज गोपियों के जो चरम विरह विप्रलम्ब है, उस विरह विप्रलम्ब में जो महान भावों की परिस्थिति आई है, जिसे समझाने के लिए श्री उद्धव जी को चयन किया, जो कि बुद्धि में सबसे बड़े और बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञानी गुणी हैं, ऋषियों के प्रवर मंत्री हैं, जो किसी प्रकार से कम नहीं, सारी शिक्षाओं को पूर्ण करने पर भी प्रेम के पाठ कुछ अभाव रह गया, इसलिए प्रेम के पाठ सिखाने को विश्व संसार को यह संदेशा देने के लिए कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजा। जबकि उद्धव जी ब्रज में गए हैं, उस समय ब्रज की क्या स्थिति थी? जब नंद बाबा उनसे मिले, उद्धव जी एक एक करके देखा है, जहाँ 3 महीने तक ब्रजवासियों ने ब्रज गोपियों ने पानी तक नहीं पिया, तो खाना पीना बहुत दूर की बात, अभी अभी आपने सुना है। जबकि नंद भवन के चूल्हे में आग नहीं जली, घर में झाड़ू नहीं लगा, मकड़ी ने जाल बुन दिया और धूल मिट्टी से भरा हुआ है, यशोदा मैया मुंह के ऊपर से कपड़ा ढक ली, जब तक कृष्ण नहीं आएंगे, जब तक मैं उनको नहीं देखूंगी, तब तक मुझे दूसरी दुनिया के और कोई चीज नहीं देखने का। इस प्रकार नंद बाबा तो अंधे बन करके बैठे किए हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ उद्धव जी पहुँचे हुए हैं, नंद बाबा सामने आए, कुछ बोलना चाहा, बोल भी नहीं सके। उस समय पर कृष्ण का स्मरण करते ही बड़े व्याकुल होकर रोते हैं, रोते रोते इतने बेहाल बोला नहीं जा रहा है। बड़े मुश्किल से कहा, हमारे भैया वसुदेव जी कुशलते हैं, देवकी जी कुशलते हैं, और मथुरावासी सब कुशल पूर्वक तो हैं, इतना कहते कहते हमारा कन्हैया कहते, इतना कह करके व्याकुल होकर के रोते। उद्धव जी उन्हें सांत्वना देने के लिए बहुत सोच विचार करते हैं, कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, सारी ज्ञान की गठे खुल गई। उस समय बड़े मुश्किल से कहा, नंद बाबा, बाबा आप तो बड़े सौभाग्यवान हैं, कृष्ण तो परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हैं, वे आपके हृदय में हैं, आपसे तो दूर नहीं, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। इतना कहते ही नंद बाबा बोले, अरे उद्धव तुम क्या कहते हो, इस तरह की बात है, मुझको तुम सौभाग्यवान बतलाते हो, मैंने जैसे दुर्भाग्य को, मैंने एक बालक को पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त किया, मैंने तो कभी कृष्ण को भगवान नहीं समझा, न कि परमेश्वर समझा, मैंने अपना बालक समझा, और तुम उसको भगवान कह रहे हो, तुम्हारे भगवान को पार करके मैं आज वो बैठा, मेरे जैसे और दुर्भागा कौन होगा। इतना कहते कहते और भी व्याकुल होकर रोने लगे। उस समय में बोले, यदि पिता है तो संसार में एकमात्र दशरथ महाराज, जिन्होंने हराम का है तो उनके प्राण पखेर उड़ गया, परंतु आज तक मेरा प्राण तो निकला नहीं, कृष्ण कहते हुए अभी तक इस शरीर से तन से प्राण नहीं निकला, अभी भी जीवित हूँ। इतना कहते कहते कृष्ण की सारी बात कहने लगे, उद्धव इस घर में बाहर में कहीं भी एक मिनट के लिए मैं चैन नहीं ले पाता हूँ, हमेशा कृष्ण का स्मरण आता है, घर का एक एक ईंट एक एक कण भी हमें कृष्ण का याद करा देता है, मैं कैसे उनको भूलूं, वृक्ष का ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसे कोई वृक्ष नहीं, ऐसे कोई पहाड़ पर्वत नदी किनारा, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कृष्ण नहीं गए हों, नहीं बैठे हों, नहीं खिले हों, आज सभी को याद करा देता है। इस प्रकार नंद बाबा कहते हुए बोले कि वृक्ष बचपन से कितने सारे विपत्तियां आई, उन सभी विपत्तियों में उन्होंने हम सब की रक्षा की, परंतु आज उनके विरह रूपी समुद्र में डूबकर इससे मैं निकल नहीं पाता हूँ,
इस प्रकार नंद बाबा के इस व्याकुलता में उस धनजी को कुछ बोल भी नहीं सके, केवल उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात दूसरे दिन जब की स्नान करके रात में बैठ कर उद्धव क्यारी वन में पहुंचे, जहां गोपियां कृष्ण के विरह में पड़ी हुई हैं, उस समय उद्धव जी को देख करके कुछ गोपियां सामने आई, बोले कि अरे ये कौन है, ये तो कृष्ण नहीं है, देखने में कृष्ण जैसा तो लगता है परंतु कृष्ण तो नहीं है, ये और कोई दूसरे हैं, निश्चित रूप में कोई कृष्ण का प्रिय अनुचर है, कोई संदेश वाहक है, निश्चित रूप में कृष्ण का कोई संदेशा दे सकते हैं। तब गोपियां बोले कि हे कृष्ण के अनुचर, अरे आप क्यों आए हो यहाँ, हे उद्धव, अरे तुम यहाँ पर क्यों आए हो, उन्हें जाना है पिता माता के पास में, उनको सांत्वना दो, उन्हें सांत्वना देने से बेधैर्य धारण करेंगे, यहाँ पर तुम क्यों आए हो, यहाँ पर तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। प्रेम संसार में प्रेम होता है दो प्रकार के, एक निरुपाधिक प्रेम, दूसरा है सोपाधिक प्रेम। जहाँ सोपाधिक प्रेम, जहाँ अपना स्वार्थ होता है, अपना मतलब होता है, वहीं पर एक दूसरों को प्रेम दिखाता है, नहीं तो जहाँ स्वार्थ खत्म हो जाता है वहाँ पर कोई प्रेम प्रीति प्यार नहीं रहता है। अतएव हे उद्धव, तुम बताओ हमने कौन सा दोष किया, हमने बचपन से ही कृष्ण को प्यार किया, उनको खिलाया पिलाया, उनकी सेवा की, उनके सुख उनके प्रति विधान को हमने जीवन में देखा, अपने सुख के लिए तो कभी कोई अभिलाषा तक हमने नहीं की, परंतु हमने कौन सा दोष किया जो कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। उस समय गोपियां कृष्ण के किशोर बाल्य लीला का स्मरण करके विरह में व्याकुल होकर रोने लगी। ऐसे समय में जब भी गोपियों ने उद्धव को साथ में ले करके चला, बोले कि चलो राधा जी की स्थिति का तो दर्शन तो कर लो, आज भी स्वामिनी जी कैसे विरह दशा में पड़ी हुई है एक बार तुम देखो। जहाँ गोपियों ने राधा जी को फूलों के सेज में जमीन पर सुला दिया और फूल से मिल करके राधा जी का शरीर इतना क्षीण बना हुआ कि फूलों के साथ में मिल के एक बन गया है, उस समय राधा जी अंतरदशा में पड़ी हुई बड़ी व्याकुल में उनको कोई बाहरी सुध बुध नहीं, जहाँ उद्धव जी जाकर उन्हें प्रणाम करके कुछ ही निकट में बैठ जाया करते हैं। ऐसे समय में कोई एक काला भ्रमर आया, जिस भ्रमर को देख करके राधा जी को देख भी नहीं रही है, मन ही मन उनके गुंजन को सुन करके अंतर्भाव में डूबी हुई दिव्य अनुमाद में राधा जी कहती है, राधा जी विरह में ध्यायन्ति अंग संगमम, कृष्ण मिलन की चिंता करती हुई राधा जी उस समय विरह में व्याकुल होकर के उस भ्रमर को कहती है, अरे भ्रमर तुम यहाँ पर क्यों आया है, यहाँ से तुम चले जाओ, क्यों हमें मनाने आए हो, क्यों तुम्हारी क्या जरूरत है, इसलिए यहाँ तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मधुबर कितना कुछ बिलुली तो माला तुम तुम शत्रु बहतु मधुपति मारिणी नाम तत्प्रसादम जदु सदस्य विडम्बम यत्र दूत तमेत्री, हे मधु तुम जैसे कपट हो तुम्हारे प्रभु भी वैसे ही कपटी है, धूर्त है, छल है, हम लोगों के साथ में कैसे छलपूर्ण व्यवहार किया, आज हमें छोड़ दिया है और कैसे कपट व्यवहार किए हैं, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, हमें तुमसे कोई जरूरत नहीं है, क्या एक माननीय को मनाने के लिए ऐसे ही आया जाता है, आना है तो तुमने ऐसे क्यों शराब पिया और मुंह में गुलाल क्यों, भोपों में गुलाल क्यों लगा करके आया, ये कुमकुम क्यों लगाया, इस तरह से राधा जी माननीय हो करके रूठ करके बहुत सारी बातें करती हैं और अंत में यह कहती है, भ्रमर तुम यहाँ से जाओ, तुम क्यों बार बार मनाते हो, तुम्हारे प्रभु से कोई संधि वार्ता तो हो ही नहीं सकती, क्या मैं मथुरा में ये तो संभव नहीं। गोपियां वृंदावन में हैं, कृष्ण मथुरा में हैं, परंतु मथुरा वृंदावन की दूरी केवल इतना ही है, बीच की एक रेखा मात्र मानी जाएगी। परंतु गोपियां जिस भाव राज्य में डूबी हुई है वहां से तो हजारों मील दूर है, इसलिए गोपियां कैसे जा सकती हैं, यह तो संभव नहीं। उस समय राधा जी कहती है, वहां जा करके मैं करूं क्या, श्री वधु साधु वास्ते लक्ष्मी जी स्वर्ण रेखा के रूप में उनके बक्षक स्थल में विराजमान रहती है, जब कोई होती नहीं तो उस समय वधु बन करके उनके बाएं तरफ बैठ जाती है, वहां जा करके मुझे सौतेन भाव आ जाएगा, तो मैं जाकर के करूं क्या, क्या यह बताओ। अभी भी जहां प्रियतम क्या मथुरापुरी में है या और कहीं दूर चले गए हैं, यदि होंगे तो अवश्य कभी लौट के आएंगे, क्या कभी हम लोगों का स्मरण करते हैं, ब्रजजनों का स्मरण करते हैं, पिता माता का स्मरण करते हैं, कभी सखाओं का गायों के लिए कभी स्मरण करते हैं, कभी ऐसा भी कहते होंगे कि मथुरा की जब की नागरिया महिलाएं जब की उनकी सेवा करती हैं, तब तो ऐसा तो कहा करेंगे कि देखो तुम लोग जिस प्रकार से सेवा करती हैं, ऐसे बचपन में ब्रज गोपियां सेवा करने का प्रयास करती थी, परंतु वे कर नहीं पाती थी, क्योंकि गांव की गुमारिया वो कहां जानती इतनी कलाएं इतनी परिपाटी, कभी ऐसा भी कहा करते। यह सारे दुनिया में घूम करके जहां कहीं भी उन्हें चैन नहीं मिले, कहीं गोपियों की जैसी सेवा नहीं मिले, तब सबको छोड़ करके क्या वे कभी यहाँ लौट के आएंगे, और किं करिणाम भुजम अद्रु मूर्धन धास्यत कदानु, इन दीनदासियों के मस्तक पर अद्रु सुगंधित भुज जुगल अर्पण करेंगे, क्या कि वे कभी लौट कर आएंगे। अये दीन दयात्र ना हे मथुरा ना कदा वो लोक हृदय कदा लोक का तरम दैत धर्मते किं करोमि अहम्। अई दीननाथ हे दीननाथ, दिनों के प्रति आप तो दया करने वाले हैं, हम जैसे विरहिणी दिनों के प्रति क्या आपका अनुग्रह होगा, फिर कभी आप लौट के आएंगे। आप तो मथुरा नाथ हैं, यदि वृंदावन नाथ होते तो अवश्य वृंदावन में लौट के आते, अब तो आप मथुरा नाथ बन गए हैं, अब कहने का कोई अधिकार नहीं रहा। कदा वो लोग कैसे, क्या कभी जीवन में ऐसा दिन आएगा कि आपका दर्शन फिर से मिलेगा। हृदय कदा लोग का तरह हे काम प्रियतम हे श्याम सुंदर, तुम्हारे अदर्शन के तुम्हारे दर्शन के बिना मेरा हृदय अतिशय कातर हो रहा है, बुद्धि भ्रमित हो गई है, अब इस समय मैं क्या करूं। इतना कहती हुई राधा जी मूर्छित हो जाती है, उस समय सारी गोपियां रोने लगती है। उद्धव जी से कहती है, उद्धव यदि कोई संदेशा लेकर के आए हो तो क्यों नहीं बताते हो, बताओ, देखो ना राधा जी की क्या दशा है, क्या स्थिति है। उस समय उद्धव जी ये प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, अहो विरहेण मे महाभागा महान मे अनुग्रह कृत, हे महाभाग्यवती गोपियों मैं अब क्या कहूँ, आपका आप लोगों का इतना महान प्रेम जिस प्रेम हिमालय के जैसा, और मैं एक सामान्य तुच्छ बालक, वो तो मैं सिर ऊंचा करके देखते देखते मैं थक गया, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता, कृष्ण ने जो संदेश दिया उससे तो आपको कोई सांत्वना भी नहीं हो सकती, मैं अब क्या कहूँ, आपने इस प्रकार मेरे प्रति परम अनुग्रह किया है, ऐसा महान प्रेम न भूतो न भविष्यति न कभी हुआ है न कभी हो सकता है, मैंने तो जीवन में पहली बार अनुभव किया। इस प्रकार कृष्ण के कुछ संदेशा सुनाए, जो कि कृष्ण ने कहा, हे ब्रज गोपियों मैं तुम्हारे मन में प्राण में हृदय में सर्वत्र अवस्थित हूँ, मैं मथुरा में हूँ और तुम लोग वृंदावन में हो, तुम्हारा मान मेरे पास में पड़ा हुआ है और मेरा मान तुम्हारे पास में पड़ा हुआ है, इसलिए मन से तो कोई विच्छेद नहीं, यह शरीर का विच्छेद अति शीघ्र ही हम लोग दोनों मिलेंगे। ये और एक बात देखो, देखो दो शरीर एक साथ में मिलता है और उस समय दोनों का मान अलग अलग हो जाता है, क्या वो मिलना श्रेष्ठ है या दोनों का मान एक जगह मिल जाए वो श्रेष्ठ है, कौन सा श्रेष्ठ है, ऐसी सारी ज्ञान की बातें सुनाई। परंतु गोपियां बोली, उद्धव क्यों तुम हम लोगों को बार बार पीड़ा देते हो, इसको सुन करके और भी रोष बढ़ जाता है, इसलिए इस नीम के रस को तुम जो ज्ञान की गठरी को ले आए हो, इस नीम रस को तुम पेटारी भर करके मथुरा में ले जाना, वहाँ के नागरिकों को पिलाना, बेटा पिए हमें जरूरत नहीं है, सैकड़ों जन्म